मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 30 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग कल के विषय को ही आगे बढ़ाएंगे और कल हम लोग बात कर रहे थे भारत की विदेश नीति के बारे में और दो तीन पॉइंट्स की चर्चा करते हुए मैंने समाप्त किया था उसे गुट निरपेक्षता की नीति पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि प्लीज भारत की विदेश नीति को आप बहुत अच्छे तरीके से सुने, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से समझें भी, और खासकर कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट उसके हैं, जो तत्व हैं। देखिए, एक तो क्या है कि सामान्य सिद्धांत होते हैं, है ना, कि विश्व शांति का समर्थक है, स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन है, गुट निरपेक्षता को लेकर के चलता है, ये सारी की सारी बातें जो है वो सैद्धांतिक है और ये तो आपको जाननी ही चाहिए। लेकिन अगर हम नंबर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या यूं कह लीजिए कि रियल सेंस में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है और वो होते हैं तथ्य। नो डाउट कि तथ्यों का जमावड़ा ही हमारे उत्तर को अच्छा नहीं बना देता कि हम ढेर सारे तथ्य डाल दें और हम समझें कि हम बहुत अच्छा उत्तर लिख कर किया है, नहीं। लेकिन कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तो हमें मालूम ही होने चाहिए ताकि जो हम कह रहे हैं, जो बात हम सिद्धांत के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उन्हें तथ्यों के माध्यम से सिद्ध कर सके। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो एग्जामिनर है स्वाभाविक तौर पर उसके ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं, ये केवल ऊपरी बातों को ही नहीं जान रहा है। देखिए, ऊपरी बातें इस मायने में कि आप केवल सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो जरूरी है, सही भी है, लेकिन जब आप उसको सपोर्ट दे देते हैं कंटेंट से तो वो बहुत मजबूत हो जाता है ना, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है। देखिए, लॉजिकल होना और एनालिसिस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लॉजिकल होने का मतलब है कि आप अपनी बात को प्रामाणिक तौर पर कह रहे हैं, ये लॉजिकल है। एनालिसिस की बात है कि आप प्रामाणिक तौर पर तो कह रहे हैं लेकिन बकायदे विश्लेषण करके कह रहे हैं, यानी कि उसके जो कमजोर पक्ष है या जो खाली पक्ष है उन पर भी आपका ध्यान आपका ध्यान जा रहा है और फिर आप अपनी बात को पूरी शक्ति के साथ, पूरे दमखम के साथ, तत्वों के साथ रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। मित्रों, जब कल मैं आपसे भारत की विदेश नीति के बारे में बात कर रहा था तो आपने उसमें शायद एक बात महसूस की हो या हो सकता है कि आपकी पकड़ में न भी आया हो, और वो बात यह थी कि मैंने एक तत्व लिया था भारत की सांस्कृतिक परंपरा, मैंने उसके संदर्भ में थोड़ी सी इतिहास की बात की थी, आपको ध्यान होगा। और लेकिन मैं इससे जो परंपरा की बात को निर्धारक तत्व, जो हम विश्व की जो विदेश नीतियां होती हैं उनके निर्धारक तत्वों के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन भारतीय संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आपने महसूस किया होगा कि मैंने केवल सांस्कृतिक परंपरा के एक बिंदु को उठाया कि किस तरह से भारत बेसिकली साम्राज्यवाद के विरोध में शुरू से रहा है, और आप देखिए कि केवल यह एक ही तत्व कितने ढेर सारे और तत्वों का कारण बन गया है। मतलब जैसे कि एक जड़ होती है और उस जड़ में से फिर ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाती हैं, तने निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर आपने देखा ना कि उसमें से कितने सारे तने निकल गए। एक तना विश्व शांति का निकल गया, एक तना फिर आप कह लीजिए कि गुट निरपेक्षता का निकल गया, एक तना फिर स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन का निकल गया, एक तना फिर एफ्रो एशियाई एकता का निकल गया, और ये सब के सब उसमें से निकलते चले गए, राइट। और इसमें एक और भी जोरदार बात ये है मित्रों कि हमारे जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, मैं चाहूंगा कि इसे भी आप एक कंटेंट के रूप में, रेफरेंस के रूप में नोट कर लें। कुछ चीजें होती हैं जो हमें नोट कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एक इससे पहले बताया था कि जो यूएनओ का चार्टर है उसकी धारा 14 वो आपको रट जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारा अनुच्छेद है, हमारा है अनुच्छेद 14 और ये राज्य के, सॉरी, हमारा अनुच्छेद है 51, 14 नहीं है, वो यूएनओ का 14 है, बोलने में कभी कभी इस तरह की गड़बड़ियां हो जाती हैं। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, देखिए उसमें बकायदे मेंशन किया हुआ है कि भारत क्या करेगा, उसमें दिया हुआ है कि भारत किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा, किस तरीके से दो देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने में मध्यस्थता करेगा, ये सारी दो तीन चार पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें, नोट करके उसे समझ लें। आप पाएंगे कि हालांकि ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनके लिए अनिवार्यता नहीं है, लेकिन भारत की विदेश नीति के फाउंडेशन में आपको ये तत्व दिखाई देंगे। फिर ऐसा लगता है कि शायद इन तत्वों को ही आधार बना करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति का ढांचा खड़ा किया, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो वो चीज बड़ी सामान्य सी दिखाई देती है कि ठीक है पढ़ लेंगे रट लेंगे, लेकिन उसी से बात नहीं बनेगी। जब आप उसे जोड़ जोड़ करके देखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ चमत्कार जैसा होता हुआ दिखाई देगा, लेयर्स खुलने लगेंगे, मतलब स्तर पर स्तर जैसे कि उघड़ती चली जाती है उस तरह से उघड़ती चली जाएंगी और आपको फिर खूब मजा आने लगेगा। तो मित्रों आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो 51 अनुच्छेद है उसे भी यहां ऐड कर लें, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए कि हम इसी को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, गुटनिरपेक्षता का आपने देख लिया है। इसी के साथ ही देखिए दो तीन और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक कहा जाता है हमारी नीति के अंतर्गत ही कि हमने नस्लवाद का विरोध किया है। नस्लवाद का विरोध का मतलब है कि रेसिज्म। सच पूछे तो भारत खुद नस्लवाद का शिकार रहा है। भारतीय इतिहास के दौर में आपने पढ़ा है कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज किस तरह से गोरे और कालों का भेद करते थे। आपको वो घटना मालूम है कि किस तरह से जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के ट्रेन के फर्स्ट क्लास के दर्जे में सफर कर रहे थे तो एक अंग्रेज घुसता है और उनको निकाल करके वो बाहर फेंक देता है। और केवल ये कि नहीं, ये जो फर्स्ट क्लास की जो बोगी है ये अंग्रेजों के लिए है, जबकि कानूनन ऐसा नहीं था। देखिए इसलिए कि गांधी जी बकायदे टिकट लेकर बैठे थे, तो आप टिकट ही मत देते ना, आप टिकट दे रहे हैं तो उनका अधिकार तो है। तो ये जो नस्ल भारत में भी बहुत होता था, मतलब ये जो कनाट प्लेस वगैरह के एरिया थे, याद रखिए कि ये प्रतिबंधित था। मालूम था मतलब ये केवल कुछ लोगों के लिए था जो उस कनाट प्लेस में जा सकते थे। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट होते थे जिसमें लिखा हुआ होता था और अपमानित करने के लिए लिख दिया जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते यहां प्रवेश नहीं कर सकते। सोचिए वहां कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेज इतने नस्लवादी थे, भले ही वो अपने आप को कितने समानतावादी और डेमोक्रेटिक और मॉडर्न और पता नहीं क्या क्या कहें, तो भारत तो इसका भुक्तभोगी था। तो भारत ने अपने विदेश नीति में एक तत्व ये भी डाला कि नहीं, हम नस्लवाद का विरोध करेंगे, नस्लवाद को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब भी भारत को मौका मिला, जैसे साउथ अफ्रीका आप लीजिए, साउथ अफ्रीका में बाद में भी नस्लवाद रहा है, बकायदे गोरी सरकार रही है और वहां नस्लवाद रहा है, तो भारत ने चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, हर जगह इसका जबरदस्त रूप से विरोध किया। और यहां तक कि जिम्बाब्वे और नामीबिया, इतिहास में आपको एक नाम मिलेगा रोडेशिया, जब आप मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हो सकता है कि बीच बीच में एक शब्द आएगा रोडेशिया। ये भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं आजादी के बाद उनके नाम बदल गए हैं, है ना। तो एक रोडेशिया जिसका अब नाम है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया यहां दोनों जगह जो गोरी सरकारें थी वो बहुत ज्यादा नस्लवादी आतंक फैलाए हुए थी, आतंकी कहना चाहिए। भारत ने हमेशा नामीबिया और जिम्बाब्वे का समर्थन किया और भले ही उस पर ब्रिटेन का ही शासन क्यों न रहा हो, भारत ने कोई हिचक कभी भी नहीं दिखाई। तो ये भी हमारी नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। दोस्तों मैंने विश्व शांति की आपसे बात की थी और विश्व शांति के समर्थक के रूप में आप एक और पॉइंट ले सकते हैं और जिसे आप कह सकते हैं डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण, इसे भी आप एक पॉइंट लेकर के चल सकते हैं और मुझे लगता है कि लेकर के चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर भारत विश्व शांति का समर्थक है तो बट नेचुरल है कि वो कभी भी सैन्यकरण का भी समर्थक नहीं हो सकता। तो जब हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं तो देखिए ज्यादातर ये जो बिंदु है ये इनफैक्ट सही मायने में परमाणु निशस्त्रीकरण से जुड़ जाता है। अब आपको एक बड़ी विचित्र सी चीज यहां दिखाई देगी, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए और एक तरह से भारत की परमाणु नीति का ये अंग भी है, भारत की परमाणु नीति का अंग। अगर आप निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं तो बट नेचुरल है कि आप परमाणु अस्त्रों का विरोध करेंगे। न तो दुनिया के कोई दूसरे देश परमाणु हथियार बनाए और न ही आप बनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि भारत के साथ ऐसा नहीं है। हम परमाणु अस्त्रों का विरोध करते हैं, पारंपरिक अस्त्रों का भी विरोध करते हैं, यानी कि केवल परमाणु अस्त्र। लेकिन भारत ने क्या किया? देखिए, भारत ने परमाणु अस्त्र बनाए। आपको ध्यान होगा कि हमने मई 1974 में परमाणु विस्फोट किया, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और इसके बाद 1998 में 11 से 13 मई के बीच में, ग्यारह से 13 मई ही है शायद, डेट देख लीजिएगा, इसी के आसपास की बात है, 5 परमाणु परीक्षण किए हैं। तो डेट 3 हो जाती है क्योंकि 5 परमाणु परीक्षण किए गए। 74 में तो सिर्फ 1 परमाणु परीक्षण हुआ था, और आपको मालूम है कि राजस्थान का जो पोखरण क्षेत्र है वहां परमाणु परीक्षण किए गए। और 98 में भारत ने अपने को बकायदे घोषित कर दिया कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, हमारे पास परमाणु अस्त्र है। तो अब आपको यहां थोड़ा सा कंट्रडिक्शन दिखाई देगा कि भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक है तो फिर ये परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है? कंट्रडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के पास इसके तर्क हैं, और बहुत ही वैलिड तर्क हैं और बहुत ही सॉलिड हैं, और दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है। देखिए, जवाब क्यों नहीं है, इसके दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशन के प्रिपरेशन के बारे में भी मैंने बताया कि आप केवल महत्वपूर्ण पॉइंट को लीजिए, छोटी मोटी चीजों को नहीं। पहली बात तो यह है कि भारत का कहना है, अब परमाणु, आपको मालूम है कि निशस्त्रीकरण संधियां भी हुई है, परमाणु अप्रसार संधि और CTBT, ये सारी संधियां हुई हैं, और भारत पर दबाव डाला गया कि वो इन पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। फिर आपको यहां फिर एक पॉइंट मिलेगा कि भैया, जब आप निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं तो आप इस संधि पर हस्ताक्षर कीजिए कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसके बावजूद हम समर्थक हैं। भारत का क्या कहना है, ये लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। भारत का कहना है, पहली बात तो यह है कि ये जो संधि है ये भेदभावपूर्ण है। क्यों भेदभावपूर्ण है? कि जो 5 बड़े देश हैं दुनिया के, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के हमारे UNO के मेंबर भी हैं, परमानेंट मेंबर है, जिनके पास वीटो पावर है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है, इन सबके पास परमाणु हथियार हैं। तो इसमें प्रोविजन ये किया गया है कि ये जो परमाणु हथियार बना चुके हैं, ये तो ठीक है, अपने परमाणु हथियार रखेंगे, बस आगे नहीं बनाएंगे। तो ब्रिटेन, भारत का कहना है कि भैया, ये तो भेदभावपूर्ण है कि ये तो हथियार रख सकते हैं लेकिन दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं रख सकता, और इनके पास इतने हथियार हैं कि इस दुनिया को कितनी बार भी खत्म कर सकते हैं। तो भारत कह रहा है, नहीं, ये भेदभावपूर्ण है, ऐसा नहीं चलेगा, आप भी अपने हथियार खत्म कर दीजिए, 0 पर आ जाइए, और कसम खा लीजिए कि हम भी नहीं बनाएंगे, हम भी ऐसा कर देते हैं, भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलेगी, ये दबाव नहीं चलेगा। तो ये तो दादागिरी है, भारत सही कह रहा है। दूसरी जो बात है, भारत का कहना है कि देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र है उसमें शक्ति संतुलन बहुत काम करता है। हमारे पड़ोस में चीन है, चीन ने परमाणु हथियार बना रखे हैं, अब चीन के पास परमाणु हथियार है, और हमारा अनुभव भी बड़ा बुरा रहा है कि चीन ने 1962 में भारत पर अटैक भी कर दिया है। तो अब भारत तो कह दे कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन चीन बनाए रखेगा, तो शक्ति संतुलन की स्थिति क्या होगी? गड़बड़ा जाएगा ना, फिर तो चीन हमेशा हमें हमारे ऊपर दादागिरी करता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बाद में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, 98 में भारत के बाद उसने परमाणु परीक्षण पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन भारत शुरू से इस बारे में कहता रहा है कि पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बना रहा है, दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। तो भारत का यह भी कहना था कि चीन बना चुका है, पाकिस्तान बना रहा है, तो आप पाकिस्तान से भी कहिए कि वो भी हस्ताक्षर करें, करवाइए उससे, पाकिस्तान मना करता रहा है। तो बोले, भैया वो क्यों मना कर रहा है, जब पाकिस्तान नहीं हस्ताक्षर कर रहा है, वो भी हमारा पड़ोसी देश है, वो भी हम पर आक्रमण कर चुका है, तो फिर हम कैसे हस्ताक्षर करें? तो भारत की ये दो सबसे बड़े प्ली है, जो सबसे बड़े तर्क है। तीसरी बात जो भारत कहता है वो ये है कि हम परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कामों के लिए करेंगे, और आपको मालूम है कि परमाणु ऊर्जा के लिए भारत बहुत ज्यादा काम कर रहा है, हम शांतिपूर्ण इसका उपयोग करेंगे, हम विध्वंस के लिए उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र हैं। मित्रों, आप इसे कह सकते हैं कि यह हमारी परमाणु नीति है, ये हमारी भारत की परमाणु नीति है, और ये भी इंडिपेंडेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में स्वतंत्र टॉपिक है जो मैंने विदेश नीति के तहत आपसे चर्चा की है। तो सच पूछे तो देखिये मोटी मोटी जो विदेश नीतियां हैं वो हम इन्हीं को लेकर के चलते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ कुछ और भी पॉइंट है। क्या है? पंचशील। मित्रों चूंकि अब वक्त नहीं है तो मैं पंचशील की चर्चा भी नहीं कर रहा हूं, आगे हम कभी करेंगे। पंचशील है, फिर मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं लुक ईस्ट पॉलिसी है, फिर गुजराल सिद्धांत है, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। ये जो चार पॉइंट हैं ये भी विदेश नीति के ही कहीं ना कहीं अंग है, लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो मित्रों समय आने पर डेफिनेटली हम इन पर भी बातें करेंगे, और अभी हमारे पास समय है, राइट। तो आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।